हूँ टारी बात्या आकाशवाणी बीकानेर जोधपुर उदयपुर और कोटा से एक साथ प्रत्येक माह के तीसरे शुक्रवार को शाम 5:30 बजे से 6 बजे तक प्रसारित होने वाला कार्यक्रम जिसमें आप सुनेंगे विशेषज्ञों से ऊँटों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र बीकानेर।
श्रोताओं नमस्कार। समृद्ध परंपराओं और समृद्ध संस्कृतियों का देश हमारा भारत आज इतनी विभिन्नताओं को अपने में समेटे हुए है जिनके बारे में यक बायक कहना बड़ा मुश्किल होता है। हमारी सबसे बड़ी विशेषता रही है कि हमने अपने संस्कृतियों को संजोया है और आज भी हम उनके संरक्षण और संवर्धन का कार्य निरंतर करते आ रहे हैं। प्रकृति ने हमारे देश में प्रचुर मात्रा में जीव जंतु और वनस्पतियां दी हुई हैं। अपनी आवश्यकता के अनुसार हम काल सापेक्ष उनको अपनाते भी रहे हैं और छोड़ते भी रहे हैं। खासतौर से हम जब राजस्थान प्रदेश की बात करते हैं तो ऊंट यहाँ के जन जन में रचा और बसा था। एक समय में थार के जहाज के नाम से प्रसिद्ध ऊंट यहाँ के लोगों के आजीविका का मुख्य साधन रहा। समय बदला, परिस्थितियां बदली, लोगों ने कुछ चीजों को लिया तो कुछ चीजों को छोड़ा। लेने और छोड़ने के क्रम में ऊंट भी शायद प्रभावित हुआ। आज ऊंट धीरे धीरे हमारे बीच से सिमटता सा जा रहा है। कार्यक्रम ऊंटारी बातें आज पहली कड़ी के साथ आप सबके समक्ष प्रस्तुत है जिसमें हम बातें करेंगे, जानकारियां देंगे, विशेषज्ञों के माध्यम से उन समस्याओं का समाधान करेंगे जो ऊंटों से संबंधित है। पहली कड़ी में आप सब सुधी श्रोताओं के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर B.S. प्रकाश जो कि सहायक महानिदेशक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के, डॉक्टर N.V. पाटिल जो कि निदेशक हैं राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र बीकानेर के, डॉक्टर शरद चंद मेहता आप प्रधान वैज्ञानिक और मुख्य अन्वेषक हैं राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र बीकानेर के। ये कार्यक्रम आप प्रत्येक माह के तीसरे शुक्रवार को आकाशवाणी बीकानेर जोधपुर कोटा और उदयपुर से 5:30 बजे से 6 बजे के बीच सुनेंगे। पहली कड़ी में आप सब गुणीजनों के साथ बातचीत करेंगे गौरा काकी और भूमजी भाई। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम की पहली कड़ी।
धन्यवाद मिलिंद जी। ऊंटारी बाता कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
भूमजी भाई आज अपन बात करेंगे ऊँटों की और साथ में अपन बात करेंगे पशु जैव विविधता संरक्षण में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का योगदान।
आप तीन गुणीजनों का इस कार्यक्रम में स्वागत है
और नमस्कार।
नमस्कार
नमस्कार।
भूमजी भाई देखो बात जब हम वैज्ञानिकों की करते हैं तो आज के युग में एक तपस्या से कम नहीं है कोई भी शोध करना, अनुसंधान करना, और इस तपस्या का फल आम नागरिकों को, आम पशुपालकों को मिले, इससे ज्यादा बढ़कर कोई भी खुशी की बात हमारे लिए हो नहीं सकती।
हो नहीं सकती। गबरा काकी, इंसान हमेशा अपनी सुविधा के अनुसार पशुपालन करता आ रहा है, उनका उपयोग करता आ रहा है, उनके साथ खिलवाड़ भी करता आ रहा है, लेकिन हमारे जितने भी शोधार्थी है, हमारे वैज्ञानिक है, उनकी मेहनत, वो दिन रात मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत का परिणाम कि आज ये हमारे जो पशु है जो बचे में उनका संरक्षण हुआ है। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा डॉक्टर शरदचंद्र मेहता साहब, आप प्रधान वैज्ञानिक हैं और आपने अनेक शोध किए हैं और शोध का लाभ पशुपालकों को मिला है। आपने ये जो माध्यम चुना है रेडियो, जो बहुत ही सशक्त माध्यम है, आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए भूमजी भाई, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि आज के समय में इंसान अपनी जरूरतों के मुताबिक पशुओं को काम में लेता है और किसको पशु को रखना है और किस पशु को छोड़ देना है ये उसकी आदत सी बन गई है। इसके लिए मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि जैसे आम जनजीवन में हम देखते हैं कि एक देसी बैंगन की वैरायटी होती है और एक विदेशी बैंगन की वैरायटी होती है। उत्पादन की चाहत में हमने देसी को छोड़ दिया और विदेशी को हमने अपना लिया, लेकिन समय के साथ हमने देखा कि हम वापस मुड़कर बाजार में जाके उसी देसी बैंगन को संभाल रहे हैं। उसी तरह हम बात करें गेहूं की, अगर तो जो गेहूं हम देसी खाद से, गाय के गोबर के खाद से पैदा करते थे, उसको उत्पादन की चाहत में हमने कहीं छोड़ दिया था, लेकिन आज हम फिर उसी खाद से उसी तरह के गेहूं को फिर संभालते हैं। ये बताता है कि उनमें, उन देसी चीजों में जो गुण है वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है और उस जरूरत के लिए हमें इनका संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए संरक्षण के लिए हम प्रयासरत हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोग इस कार्यक्रम में हमारे से जुड़े और हम संरक्षण की बात, संरक्षण का संदेश जन जन तक पहुँचा सके।
आपने माध्यम रेडियो चुना?
हाँ, ये एक बहुत ही खास विषय है कि मैंने ये माध्यम रेडियो इसलिए चुना कि आप देखते हैं हमारा जो पशुपालक है, ऊंट पालक खास तौर से, वो कई बार गांव में भी वापस नहीं आता, वो घर में वापस नहीं आता, वो 12 घंटे घूमता रहता है, इवन कई बार तो वो जंगल में ही रात गुजारता है। ऐसी परिस्थिति में अगर हम किसी कार्यक्रम को अगर हम टीवी के माध्यम से करते हैं तो वो उस तक नहीं पहुंच सकता। ये घर में तो जाता ही है, शहर में भी जाता है, लेकिन ये गांव और जंगल तक भी जाता है। ये एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसको हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी मन की बात कहने के लिए इसको चुना है, और वो चाहते तो उनके पास हर तरह का साधन उपलब्ध था, लेकिन इस साधन को चुना और उसी से प्रेरित होकर मुझे भी अच्छा लगा कि मैं अपनी ये बात इस माध्यम से लोगों तक पहुंचाऊं।
रेडियो जन जन की वाणी है और वो जन जन तक पहुंचती है और बहुत ही सशक्त माध्यम से पहुंचती है।
और अब हम बात करते हैं डॉक्टर बी एस प्रकाश साहब से। हम बात करें पारिस्थितिकी संतुलन की, तो इसमें पशु जैव विविधता का क्या महत्व है?
भूम जी, बहुत ही अहम सवाल आपने किया है। जब हम बात करते हैं पशु जैव विविधता की, तो हमें इस बात का ध्यान होना चाहिए कि हमारे देश में तरह तरह के पशु हैं, पालतू पशु हैं, और ये पालतू पशु करीब करीब हमारे पशुपालक जो इसका इसके साथ इसके जो उत्पादक से हमारे देश में जो पशु उत्पादन जो हो रहा है, और पशु उत्पादन से उसके जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो उससे इंसान को इतना फायदा हो रहा है। और इस पशुओं के बारे में हम बात करें तो तरह तरह के जो पशु हैं, जैसे गाय हैं, भैंस हैं, बकरी, भेड़, सीकर, और इसी तरह से ऊंचे इलाकों में जहाँ पे हिमालय की जो पहाड़ों में भी मिलते हैं, जहाँ पे याक है और मिथुन है, और ऊंट जो कि हमारे रेगिस्तान में यहाँ पे भी पाए जाते हैं और बर्फीले रेगिस्तान में भी पाए जाते हैं, तो वो सारे पशु शामिल हैं। और ये सारे जो पशु पालक हैं, ये सब बहुत सीमांत किसान या जिसके पास बहुत ही कम जमीन है और या जिसके पास बिल्कुल जमीन नहीं है, ये अधिकतर उन्हीं के पास सीमित रह गई है। करीब 80% पशु जो है ये पशुपालक, ये जो सीमांत किसान है, जो छोटे किसान है और या जिनके पास बिल्कुल कोई जमीन नहीं है, ये इनको पालते हैं। तो हमें जब हम देखते हैं तो इसमें जगह जगह हमारे पास इतने ही प्रांत हैं, इतने ही हमारे जो वातावरण है वो अलग अलग जगह में अलग अलग वातावरण में पले हैं, तो हमारे पास इतनी नस्लें हैं, लेकिन हम उन सब नस्लों को हमें उनका पंजीकरण करना है, उनका विश्लेषण करना है और उसको पूरी तरह से उसको सही मापदंडों में उसको लेके आना है। और इसके लिए हमारे पास ये एक बहुत बड़ा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसके ऊपर पशु संरक्षण, न केवल पशु संरक्षण के लिए, पशु संवर्धन के लिए भी काम करता है। उसके लिए वो 19 ऐसे संस्थान उसके पास संरक्षण में है, मतलब उन्होंने इन संस्थानों से, और उसके अलावा इनके पास 13 और अधिक परियोजनाएं हैं जिसमें अनुसंधान और नेटवर्क के कारण से सारे जो विश्वविद्यालय हैं जो हमारे देश में पूरे भारतवर्ष में, और कुछ एनजीओस हैं जैसे बैफ है, उन सबों को जोड़ के वहाँ पे ये कार्य किया जा रहा है कि हर जगह के जो पशु हैं, जैसे हमारे तरह तरह के गाय हैं, तरह तरह के बकरियां हैं, तो इनको किस तरह से हम इसका विश्लेषण करें और इसका हम पंजीकरण करें। तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि अभी तक सिर्फ 20% ही हो पाया है, 80% पशु तो अभी तक उनका पंजीकरण हो ही नहीं पाया है, और ये हमारी धरोहर है, हमारे देश की धरोहर है। हम इसको पूरी तरह से, ये अपना है और हम इसको अपना समझकर हमारे किसान भाइयों को, हमारे पशुपालकों के लिए हम जितना हो सकता है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की जो पशु विज्ञान विभाग है वो इसमें पूरी तरह से कायम है, और उसके 712 वैज्ञानिक जो इस 19 संस्थानों में से जुड़ी हुई है वो इसमें तत्पर है, इसके कार्य में इनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए, जिससे कि हमारे पशुपालकों का भी उत्थान हो और उनका बढ़ोतरी होगी, और इस जब पशुपालन की बढ़ोतरी होगी तब हमारे भारतवर्ष की भी बढ़ोतरी होगी, ये मेरा मानना है।
बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब आपने कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो योगदान है वो अमूल्य है, अनूठा योगदान है।
और भूमजी भाई देखो, आज हम बात कर रहे हैं ऊँटों की, और सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ हैं डॉक्टर एनवी पाटिल साहब जो कि निदेशक हैं राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में। तो देखिए डॉक्टर साहब, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र ऊँटों पर क्या क्या अनुसंधान कर रहा है जिससे कि ऊँटों का संरक्षण और संवर्धन हो?
गौरव काकिया, आपने बहुत सही बात की कि ऊँटों के संरक्षण के लिए, और 30 साल पहले 5 जुलाई 1984 में प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑन कैमल ऊँटों के लिए एक प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट की स्थापना हुई, और आज 30 साल से राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र उन अनुसंधानों के साथ जुड़ा है जिसमें ऊँटों के सभी विषय पर हम बात कर रहे हैं। उसमें अनुसंधान के विषय आते हैं कि अनुवंशिकी, जिसमें हम जो नस्लें जो ऊँटों की है उसको संरक्षित करना, उसका संवर्धन भी करना, उसके साथ साथ उसका मॉलिक्यूलर लेवल पे हमने कैरेक्टराइजेशन करने की भी बात की है। पोषण की भी बात, हम ऊँट किस तरह से हम अच्छी तरह से चराई उसको कैसे उपलब्ध कराए, या उसको अगर अंदर बिठा के खिलाना है तो किस तरह से हम उसको खिलाए, उसके साथ साथ उसके रोग और रोग निदान और उसके उपचार कैसे हम करें उसके ऊपर भी अनुसंधान चल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि दूध एक ऐसा हमारे पास ऊंटनी का स्रोत मिला है जिसके लिए ये अनुसंधान केंद्र बहुत आगे चला है और ऊंटनी के दूध में जो औषधीय गुण है और उसके साथ जो उत्पाद हम बनाते हैं उसके बारे में भी बहुत सारा अनुसंधान हम कर रहे हैं।
गौरा काकी देखिए इनके पास है बहुत ही गुणी बातें, लेकिन आज मैं लेके आया हूँ एक लोकगीत।
देखिए जिस तरह से हमारी संस्कृति में रचा बसा है उसी तरह हमारी संस्कृति की परंपरा है कि आने वाले मेहमानों का हम स्वागत करते हैं और हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे लोकगीत।
हाँ।
तो हम इनका स्वागत लोकगीत से।
कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र बीकानेर।
आप इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम ऊंटारी बाता और आज जानकारी देने के लिए पधारे हैं डॉक्टर बीएस प्रकाश, सहायक महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, और हमारे साथ है डॉक्टर एन बी पाटिल, आप निदेशक हैं राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र बीकानेर, और आप डॉक्टर शरद चंद्र मेहता, प्रधान वैज्ञानिक। डॉक्टर बीएस प्रकाश साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किसान की आजीविका बढ़ाने में पशुओं का क्या योगदान है।
भौमजी भाई, आपने जो इतना अहम सवाल अभी अभी किया है, मैं आपको ये एक बात बता दूं कि जब हम पशुपालकों की बात करते हैं तो हमें एक इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि ये जितने भी हमारे पास पशु हैं तो इनको इनका जो पूरे नेशनल लेवल में पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसका 4% राशि जो है, जो राष्ट्रीय लेवल पे जो प्राप्त होती है वो पशुधन से आती है। इसका मतलब मैं अगर आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि गत वर्ष में करीब 4,000 करोड़ रुपया पशुधन से ही प्राप्त हुआ है, और ये तकरीबन अगर हम जो कृषि और पशुधन को मिलाएं और मिलाकर ये फिर उसका 30% हिस्सा बनता है, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जहाँ तक हमारे किसान हैं, जहाँ पे पशुपालक हैं, अगर ये किसान पशु भी साथ में पालता है और अपनी खेती भी करता है तो ये एक बहुत ही अच्छा उसके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि पशुओं से उसको हर रोज उसको कुछ ना कुछ उसको आमदनी मिलती रहती है, जो कि उसको हमेशा इंतजार करना पड़ता है अगर वो सिर्फ खेती पे ही निर्भर रहता है। और खेती प्रकृति के ऊपर बहुत बहुत निर्भर है, लेकिन पशु अगर उसके पास है तो उसके पास हमेशा अपने घर बार को संभालने के लिए, अपने घर की का पालन पोषण करने के लिए, अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए ये पशु हमेशा उसके साथ रहते हैं। इसलिए यहाँ पे जो कहते हैं हमारे देश में ये जो पशुओं को बिल्कुल एक व्यापार में अपने परिवार में ये इसको इसके साथ जोड़ते हैं और बहुत प्यार से रखते हैं।
परिवार का हिस्सा है,
बिल्कुल परिवार का हिस्सा है। तो इसलिए मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे पास न केवल जमीन पे जो पशु हैं जैसे कि गाय है, भैंस है और बकरी है, भेड़ है, इसके अलावा हमारे पास ये जो ऊंट है ये बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि ऊंट सिर्फ रेगिस्तान में पाया जाता है। लेकिन हमारे पास इस बात के लिए ये बहुत ही शोचनीय है कि पिछले साल 40 साल में ये ऊंटों की आबादी घटती जा रही, इसको हमें रोकना है। इसके लिए हमारे जो राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान संस्थान जो कि बीकानेर में है, ये यहाँ पे जो वैज्ञानिक है ये इस बात से इनको ज्ञात है और ये इस पर बहुत तत्पर से काम कर रहे हैं और बहुत इन्होंने अच्छी अच्छी विविध तकनीकियां निकाली हैं जिनसे कि हमें न केवल ऊँटों से उत्पादन बढ़ रहा है, ऊँटों के उत्पादन का मतलब दूध का उत्पादन, उसके कार्य क्षमता का जो उत्पादन है, उसके जो बाल है, जो उसका उसकी जो खाल है उससे जो उत्पादन हो रहा है, वो सब का जो से जो उत्पादन है उससे हम ये चाहेंगे कि जो ऊँट पालक है उसकी आमदनी बढ़े। और इस कार्य में हमारा जो ऊंट अनुसंधान संस्थान है ये कार्यरत है और इसके यहाँ पे जो हमारे साथी हैं ये अभी करीब करीब 30 साल से इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं।
बिल्कुल सर, आप लोगों की मेहनत बोलती सर, और आप ही का परिणाम है कि पशुपालक की जो आय है वो निरंतर बढ़ती जा रही है और लोग युवा विशेषकर युवा पशुपालन से जुड़ रहे हैं,
जैसा कि डॉक्टर बीएस प्रकाश साहब ने अभी बताया।
बोम जी भाई, बातचीत तो हम आगे भी जारी रखेंगे लेकिन पहले एक सुन लेते हैं छोटा सा लोकगीत।
हाँ गौरा का
मारा भंवर सारा हवा महल में चंपो सुखे रे।
अभी आप सुन रहे थे ये लोक गीत। गौरा काकी, अब बातचीत करते हैं गुणी लोगों से।
जी जरूर, पशु जो है हमारे आजीविका साधन भी है। इसी संदर्भ में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ऊँटों की नस्लें कौन कौन सी है और उनकी संख्या कितनी है, और आम ऊँट पालक तक अच्छी नस्ल के नर ऊँट पहुँचाने का माध्यम क्या होता है?
सबसे पहली बात गौरा काकी ये है कि ऊँटों के बारे में पिछले 60 साल में इतनी संख्या में घट हुई है, इसी के कारण इस संस्थान का जन्म हुआ है और 30 साल पहले इसका संरक्षण और संवर्धन करने की बहुत महत्वपूर्ण जवाबदारी इस संस्थान को दी गई। अब जो बात ऊँटों के बारे में है, ऊँटों में भारत में अपने पास 4 नस्लें हैं, जिसमें बीकानेरी नस्ल सबसे ज्यादा प्रमाण में पाई जाती है, जैसलमेरी जैसलमेर के आसपास के क्षेत्र में रेतीले क्षेत्र में पाई जाती है, एक मेवाड़ी जो उदयपुर और उनके पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, और एक कच्छ एरिया में एक नस्ल पाई जाती है। ऊँटों के संरक्षण उसके संवर्धन के लिए यहाँ से संस्थान द्वारा जो हम प्रयास कर रहे हैं उसमें जो नर ऊँट जिसको हम ऊँट पालकों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, अब तक हमने करीब करीब 103 अच्छे नर ऊँट जो अच्छे नस्ल के हैं वो किसानों को हमने दिए हैं, ताकि वो अपने जाके गाँव में जाते हुए अपने ऊँटों की जो नस्ल है उसका सुधार कर सके। साथ ही हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर कुछ ऊँट पालक उनकी जो मादा है ऊँटनियाँ है उसको अगर सुधार लाने की कोशिश करे तो उनको भी हम हमारे केंद्र पर बुलाकर उनको हमारे यहाँ जो उपलब्ध नर है उनके द्वारा उसकी ब्रीडिंग करा के उसका संवर्धन और उसको और आगे बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं।
बहुत अच्छी जानकारी दी पाटिल साहब आपने। और पाटिल साहब आपसे मैं एक और बात पूछना चाहूंगा कि कहते हैं कि ऊँट में कुछ गुण ऐसे भी हैं विशेषकर उसके खून में जो मनुष्य के स्वास्थ्य सुरक्षा में लाभदायक होते हैं, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए।
बहुत अच्छी बात कही भूमि जी आपने कि ऊँटों की उपयोगिता घटने लगी इसी कारण इसकी संख्या भी घटने लगी थी, और यही करीब 40 साल में और 50 साल में हमने देखा है कि 60% ये कम रहेगी। जो 10 लाख ऊँट हमारे पास थे आज घटकर हमारे पास सिर्फ 4 लाख है, और मारवाड़ प्रदेश में 80% से ज्यादा पूरे देश के ऊँट पाए जाते हैं। अब इसकी उपयोगिता बढ़ाने के लिए एक दूध पर हम हमारा संशोधन कर ही रहे हैं, उसके बहुत सारे उत्पाद हमने बनाए हैं। साथ ही ये समझ में हमारे आया है कि ऊँट जिस विषम परिस्थिति का सामना करते हुए रोगों से जूझता है, रोग उसको बड़े कम होते हैं, इसका कारण उसके अंदर उसके खून में एक इम्यूनोग्लोबिन या प्रतिरक्षारोधी कण ऐसे होते हैं जिसके कारण वो सभी विषम परिस्थितियों को झेल सकता है, और उसी का फायदा लेते हुए कुछ बातें ऐसे सामने आई कि उस प्रतिरक्षा कणों को उपयोग में लेते हुए मानवीय दृष्टि से ऐसे मेडिसिन ऐसी औषधि हम बना सकते हैं, ऐसे वैक्सीन हम बना सकते हैं जिसके कारण बहुत सारे मानव रोगों के सामने हम अच्छे अच्छे उत्पाद तैयार कर पा रहे हैं, और इसका प्रायोगिक स्तर पर हमने जो अनुसंधान शुरू किया है उसके बहुत अच्छे परिणाम हमारे सामने हैं, और भविष्य में हम आशा करते हैं कि ये पूर्ण मानव जाति के लिए जो ऊँट आज लुप्त होने के कगार पर है इसको एक और संजीवनी मिलेगी और इससे और भी ज्यादा लोग ऊँट पालन की तरफ आगे बढ़ेंगे।
हाँ देखो गौरा काकी, कितनी अच्छी बात है कि अभी तक हमें ये मालूम था कि उसका दूध उपयोगी है लेकिन खून भी बहुत उपयोगी है।
और पाटिल साहब एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आज जो हमारा पशुपालक है वो पारंपरिक रूप से पशुपालन का काम करता है, आप वैज्ञानिक हो, नई नई जानकारियां आपके पास होती है, नए नए शोध है, अनुसंधान है, वो आप कर रहे हैं, लेकिन आपकी इस तपस्या का फल हमारे आम पशुपालक को मिले, जैसे आज ऊँट की हम बात कर रहे हैं तो ऊँटों के पोषण में भी कुछ न कुछ नवीन जानकारियां आई होगी, तो वो अगर जानकारी हमारा आम पशुपालक लेना चाहे तो पहले तो आप यहाँ बताइए, फिर अगर वो आपके केंद्र पर आकर जानकारी लेना चाहता है तो क्या उसको ये सुविधा मिलेगी?
उष्ट्र पोषण भी एक अच्छा विषय है गौरा काकी, और जिसके कारण ऊँटों की संख्या में घटाई है, क्योंकि जो चरागाह हमारे मारवाड़ प्रदेश में ऊँटों के लिए खास संरक्षित थे वो आज बहुत कम हो चुके हैं, उसकी संख्या जो पेड़ थे या उसमें जो घास या जो अच्छे अच्छे पौधे थे वो अब लुप्त होने लगे हैं, और इसके कारण ऊँटों का पोषण किस तरह से करना एक बहुत अच्छी बात थी, और उसके लिए बहुत अनुसंधान कार्य हमने शुरुआत किए। उष्ट्र पोषण के लिए बहुत सारे ऐसी वनस्पति और ऐसे जो फीड है उसको हमने संग्रहित करके एक उष्ट्र पोषण का एक संयंत्र भी हमारे पास हमने लगाया है, एक संपूर्ण पोषक फीड जो पोषण के लिए फीड हमने बनाना चालू कर दिया है, और साथ ही साथ ऐसे गट्टे भी हमने बनाना चालू कर दिया है कि संपूर्ण पोषण वो गट्टे खाते हुए या वो ईंटे खाते हुए ये हो सकता है, और इसकी संपूर्ण माहिती हमारे यहाँ पे हमारे केंद्र पर उपलब्ध है, और जिस तरह से पारंपरिक स्रोतों का उपयोग करते हुए और जो अपारंपरिक स्रोत है जो कि ऊंट कभी खाता था या नहीं खाता था उसको भी सम्मिलित करते हुए इन पोषक ईंटों का हमने उत्पादन करना चालू कर दिया है, और जिसके कारण जो चरागाह में जो मिलता नहीं था या जो कमी थी वो हम उसकी पूरी भरपाई हम यहाँ करने की पूरी तैयारी हमारे पास है।
बहुत बहुत धन्यवाद पाटिल साहब। और अब डॉक्टर बीएस प्रकाश साहब, हम चलते चलते आपसे ये पूछना चाहेंगे कि हमारे जो प्रदेश के पशुपालक भाई है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से?
भूम जी, मैं वाकई में बहुत हर्ष के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूँ, और मैं ये कहना चाहूँगा कि सारे पशुपालकों को कि आपकी जो आप जिस तरह से पशु का पालन कर रहे हैं, जिस तरह से पशु के पालन करने के बाद उसके जो उत्पादन से जो उसके जो उत्पाद आप बेचते हैं जिससे आपको आमदनी आती है, तो इसमें भी आपको बहुत आगे जाके आपको बहुत बढ़ोतरी होगी, क्योंकि आज जो सारे देश में जितने लोग हैं वो पशु के जो उत्पाद का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, उनके पास ज़्यादा आमदनी है, इसकी वजह से अब इसकी जो आय है आप लोगों की आय है वो अब चार चौगुनी और बढ़ेगी, और आने वाला समय ऐसा होगा जिसमें पशुपालक जो है उसके लिए एक जीवनी और एक संजीवनी के रूप में आप देखेंगे कि इसमें कमर्शियलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा होगा, और आपकी जो जितने भी आप छोटे लघु उद्योग से आप पशु के उत्पाद को बढ़ावा दे रहे हैं वो धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा मात्रा में आप उसका उत्पादन करेंगे, ये मेरी इच्छा है। और आप इस चीज़ को और इस मेरी बात को रखते हुए आप इस पशुपालन को और आप ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं को पालें, जिससे कि हमारे देश में पशुपालन से का जो उत्पादन है और पशुपालन और पशु का जो संरक्षण है और संवर्धन है इसमें हमारी बढ़ोतरी होगी और हमारा देश और समृद्ध हो।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रकाश साहब के आपने इतनी अच्छी हमें जानकारी दी, और मैं प्रदेश के समस्त पशुपालकों से निवेदन करूंगा कि ये ऊंटारी बाता कार्यक्रम है, इसमें कोई भी आपकी समस्या है इसके लिए अब हमें कागज़ लिख सकते हैं, और हमारा पता है ऊंटारी बाता कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बीकानेर, और आज चौपाल में जानकारी देने के लिए हमारे बीच थे डॉक्टर बी एस प्रकाश, आप सहायक महानिदेशक कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर के निदेशक डॉक्टर एनवी पाटिल, और प्रधान वैज्ञानिक शरद चंद्र मेहता, आप स्टूडियो में पधारे और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको करते हैं राम राम सा।
राम राम सा।
बातें आकाशवाणी बीकानेर जोधपुर उदयपुर और कोटा से एक साथ एक माह के तीसरे शुक्रवार को शाम 5:30 बजे से 6 बजे तक प्रसारित होने वाला कार्यक्रम, जिसमें आप सुनेंगे विशेषज्ञों से ऊँटों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र बीकानेर।